SBS हिंदी सेवा के सभी सुनने वालों को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। 3 कृषि कानूनों को वापस करवाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों के खिलाफ मुकदमों की वापसी की मोदी सरकार से लिखित में गारंटी लेने के बाद लाखों किसानों ने लगभग 13 महीनों के बाद दिल्ली की सीमाओं से अपनी वापसी शुरू की। यह सिलसिला 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। उनका वापस अपने घरों को कूच करना भी किसी विजयी अभियान से कम नहीं लग रहा है। लोग उनका जगह जगह फूल बरसाकर और नारों का उद्घोष कर स्वागत कर रहे हैं। आंदोलन के इस समापन में जीत की खुशी के साथ साथ बिछड़ने का गम भी दिखा। संयुक्त किसान मोर्चे ने इस आंदोलन की जीत की याद में हर वर्ष एक मेला आयोजित करने का फैसला किया है। 11 दिसंबर को अपने भावुक भाषण में किसान नेता राकेश टिकैत ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं।
हमको आज ये एहसास होता है कि गांव उजड़ने का कैसा दर्द लोगों को होता है कि एक साल का हमारा बसा हुआ गांव जब हम इसको छोड़कर जा रहे हैं तो यादें हमेशा रहेगी, लोग वो यादें यहां से लेकर जाएंगे। लेकिन उसका भी मोर्चा एक नया तरीका निकाल रहे हैं हम। एक आंदोलन का मेला जरूर लगाना पड़ेगा बाबा जी, और वो कम से कम 10 दिन का रहेगा, 15 दिन का। और जो भी इन आंदोलन में शरीक हुआ वो उस मेले में जरूर मिलक रहेगा। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा, ये किसी धर्म का नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी मजहब का नहीं होगा, लेकिन ये आंदोलन का मेला ये हमेशा लगता रहेगा और आंदोलन की उसमें चर्चा होती रहेगी। तो सरकारों को याद रहेगा कि बगैर आंदोलन का मेला ऐसा होता है, तो जब ये आंदोलन होगा तो आंदोलन कैसा होगा।
इसके साथ साथ श्री टिकैत ने आने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी।
तो बहुत से प्रेस के बंधु कहते हैं जी अब क्या करोगे, अब पूरे देश में जाएंगे, आंदोलन की ट्रेनिंग देंगे पूरे देश में। ये संयुक्त मोर्चे के लोग, ये लाखों लोग जो ट्रेंड हुए हैं, जिसको आप अन्नदाता कहते हो, वो ट्रेनिंग देगा पूरे देश में, आंदोलन की ट्रेनिंग देगा।
किसानों के आंदोलन का असर चुनावी राजनीति में भी छाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन को एक चुनावी रैली में तब्दील करते हुए किसानों को लुभाने की कोशिश की।
आज देश में आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जो छोटे किसानों की सूद ले रही है। पहली बार 2 हेक्टर से कम भूमि वाले छोटे किसानों को सरकारी लाभ से, सरकारी सुविधा से जोड़ा गया है। बीज से लेकर बाजार तक, खेत से लेकर खलिहान तक उनकी हर तरह से मदद की जा रही है। इन छोटे किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के हजारों करोड़ रुपए सीधे भेजे जा रहे हैं। उनकी आय बढ़ाने के लिए उन्हें खेती से जुड़े अन्य विकल्पों की तरफ भी प्रेरित किया जा रहा है।
जवाब में राजस्थान में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर किसानों को एक साल तक प्रताड़ित करने का आरोपी करार दिया।
जब किसान आंदोलन कर रहे थे, महीनों से बैठे हुए थे दिल्ली के बॉर्डर पे, तो हमारे पर्यटक प्रधानमंत्री अपने घर से निकलकर 10-20 किलोमीटर दूर जहां लाखों किसान बैठे थे वहां नहीं जा पाए। पूरा साल निकल गया, वहां नहीं जा पाए। दुनिया भर में भ्रमण किया, अमेरिका गए, चाइना गए, तमाम देशों में गए, लेकिन अपने दुखी किसानों से बात करने नहीं जा पाए। ये ऐसी सरकार है, समझ लीजिए, जहां पे प्रधानमंत्री पर्यटन में व्यस्त रहते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को एक दिन में हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं, उनको कमाने में व्यस्त है, और वही सरकार है जिसमें आज इस देश का किसान एक दिन में मात्र 27 रुपए कमा रहा है।
आज प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के प्रथम फेज का उद्घाटन करेंगे। 50,000 वर्ग मीटर में फैले भव्य प्रांगण और कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च 2019 को किया था। इसे बनाने में तकरीबन 339 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं और इसके अंतर्गत 23 नए भवनों का उद्घाटन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर उनकी इस परियोजना को हथियाने का आरोप लगाया है।
और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी तो समाजवादी सरकार की थी, वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको, क्योंकि इस बार तो डॉक्यूमेंट के साथ बात करनी है, बिना डॉक्यूमेंट के बात नहीं होगी। अब कोई ये सब कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं आप बाला के किसानों की पैदावार की और उनकी आय का दोगुना पैसा सरकार को न देना पड़े।
विपक्षी दल चुनाव से कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए जा रहे सरकारी योजनाओं के लगातार उद्घाटनों और उनके चुनावी रैलियों में बदलने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का कहना है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने के केंद्र सरकार के आदेश को पंजाब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। पंजाब सरकार ने अपनी याचिका में इसे केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अधिकार क्षेत्र और संघवाद के मूल्यों का हनन बताया है। मामले का संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसके पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस आदेश के खिलाफ मुहिम चलाई थी, जिसमें भाजपा छोड़ सभी दलों ने उनका साथ दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इसे बेहद खतरनाक कदम बताया है।
सेंटर ना सिर्फ फेडरल ढांचे नु कमजोर कर रहे हैं, बल्कि स्टेट दे विच स्टेट करा कर रहे हैं। पुलिस नु कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट की बजाय सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की डेफिनेशन चेंज की जा रही है। बॉर्डर 5 किलोमीटर हो सकता है, 7 किलोमीटर हो सकता है, ट्रैवर्स नहीं कह रहा मैं सीधा इदा, लेकिन सूबे के 50 किलोमीटर अंदर कहड़ा बॉर्डर होंगे? अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए यह सारा कुछ किया जा रहा है। इट्स अ पोलीटिकल गेम, एक पोलीटिकल मूव है। राज के अंदर एक होर राज खड़ा किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस आदेश के खिलाफ पंजाब के साथ एकजुटता दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट को रविवार सुबह 2 बजे के करीब हैक किए जाने से पूरे सोशल मीडिया में खलबली मच गई। हैकर्स ने 3 मिनट में 2 ट्वीट कर डाले, जिनमें लिखा था कि भारत ने आधिकारिक तौर पर बिटकॉइन को कानूनी स्वीकार्यता दे दी है। सरकार ने आधिकारिक रूप से 500 बिटकॉइन खरीदे हैं और वह उन्हें देश के नागरिकों में बांट रही है। हालांकि कुछ देर बाद इन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया, लेकिन इस बीच वे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। मामले की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री के पर्सनल ट्विटर अकाउंट से छेड़छाड़ किए जाने की पुष्टि की और लिखा कि इस मामले को ट्विटर के सामने उठाया जा रहा है और अकाउंट को सुरक्षित कर लिया गया है। जिस अवधि में अकाउंट से छेड़छाड़ की गई, उस दौरान किए गए किसी भी ट्वीट को नज़रअंदाज किया जाए। मामले की जांच देश की साइबर क्राइम देखने वाले सबसे बड़े संगठन सर्ट इन से कराई जा रही है। गौरतलब है कि भारत सरकार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की योजना बना रही है। कुछ समय पहले सिडनी डायलॉग में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी गलत हाथों में ना जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए दुनिया के लोकतंत्रों को सहयोग करना चाहिए। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS हिंदी सेवा की ओर से आप सबको मनन कुमार का पुनः नमस्कार।